ओम शांति, ओम शांति। इस समय दुनिया में इतना दुख क्यों है? कई प्रश्न पूछते हैं ना, इस समय दुनिया में इतना दुख क्यों है? ये दुख क्यों बढ़ता जा रहा है? पहले तो इतना नहीं था, अभी ये दुख इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? तो आज बाबा ने उसका उत्तर दिया है। क्यों दुख बढ़ रहा है? क्योंकि इस समय सारी दुनिया पर राहु की दशा है। जब किस पर राहु की दशा बैठती है ना, तो उसको सब तरफ से दुख ही दुख मिलता है, सब तरफ से। अपने लौकिक भी देंगे तो और भी देंगे, सब दुनिया में सब उनको दुखी देंगे। तो कारण है राहु की दशा। तो बाबा जब आते हैं तो क्या करते हैं, इस राहु की दशा को हटाकर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं, क्योंकि वृक्षपति है ना। तो वृक्षपति खुद आकर बृहस्पति की दशा कैसे बिठाते हैं? अपना परिचय देकर। और फिर कहते हैं मुझे याद करो, इससे बृहस्पति की दशा बैठेगी। और जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो वो दुख खत्म हो जाता है और सुख मिलने लगता है। तो हम अभी कौन सी दशा में हैं? अब हमारे ऊपर कौन सी दशा है, हम क्या कहेंगे? हाँ, बृहस्पति की दशा है ना, राहु की दशा तो नहीं है ना। अब तो बाबा ने कितना सुख हमें दिया है, तो इसीलिए तुम पर जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो तुम कितने धनवान भी बन जाते हो, सुखी बन जाते हो, दुनिया ही स्वर्ग बन जाती है। दूसरा बाबा कहे कि तुम दो बाप का परिचय देते हो, जब किसको परिचय देते हो परमात्मा कौन है, तो आप उनको बताते हो ये दो हमारे दो बाप है, एक शरीर का बाप एक आत्मा का बाप। तो बाबा कहते केवल दो बाप नहीं कहो, आज बाबा ने और ऐड किया है, आप कहो कि वो जो बाप है वो केवल बाप नहीं है, वो टीचर भी है और सतगुरु भी है, तीनों है। और बाप के रूप में क्या करता है, टीचर के रूप में क्या करता, सतगुरु के रूप में क्या करता, ये सब बताओ। तो इससे को क्या सिद्ध होगा, जो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी कहते ना दुनिया में, परमात्मा कहाँ है कहेंगे, सब जगह है। तो ये सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी, क्योंकि पिता है तो वर्षा देगा ना, सर्वव्यापी है तो वर्षा कहाँ से मिलेगा, टीचर है तो पढ़ाएगा ना, सर्वव्यापी तो पढ़ाएगा कैसे, और सतगुरु है तो सबकी सदगति करेगा ना। तो पहले से ही अगर सर्वव्यापी है तो सदगति कैसे करेगा? तो आज बाबा ने ये मुख्य दो बातें सुनाई है। हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज पहली मई 2024 है। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, वो सर्वव्यापी नहीं है, ये सिद्ध करके बताओ। ये तीनों जो संबंध है इससे सिद्ध होता है कि वो सर्वव्यापी नहीं है। प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। बताया भी कि सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, सब पर बृहस्पति की दशा है। सतयुग त्रेता में रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता, सुख धाम में दुख हो नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं, बाबा ने, रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है, क्या समझाया है कि हम आत्मा हैं। अभी हम सब जान गए हैं हम आत्मा हैं, फिर रूहानी बच्चे हैं, अपने घर से है, अपने घर से कहा हमारा घर रूहानी बच्चों का, बहुत दूर से यहाँ आते हैं। कितना दूर है, कितना माइल गिनती कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सेकंड में आत्मा आ सकती है। बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने। पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में। सब योग में बैठते थे बाबा के आने से पहले, तो फिर बाबा आते थे तो बाबा देखते थे कैसे सब योग में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है। याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, इसलिए तुम याद में बैठते हो, क्योंकि तुम जानते हो इससे ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं योग योग कहते हैं ना, लोग मुंह जाते हैं योग योग, तो बाबा कहते हैं याद, तो इसको योग भी नहीं कहना चाहिए। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं, और क्या योग सिखाते हैं, हठ योग, क्रियाएं सिखाते हैं, क्या नहीं सिखाते हैं, तो सब हठ योग का ही रूप है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं, स्टूडेंट का अभी याद तो बहुत सरल है। कैसे, स्टूडेंट का टीचर से भी तो योग होता है ना, अगर याद कहे तो ठीक, पर योग भी कहे तो स्टूडेंट का टीचर के साथ तो योग होता ही है, बच्चों का बाप से योग होता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये है आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला, योग माना मिलन, तो ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला या बच्चों और बाप का मेला। ये है कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। क्यों अकल्याणकारी, बाबा कहते बाकी सब मिलन है, क्योंकि अंत में वो दुखी मिलता है ना, तो बाबा कहते बाकी सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना, तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं, और वो है परम पिता परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं, तुम ऐसे समझाते हो। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, पिता कहेंगे या बाबूजी, पिताजी, बाबा ऐसे कहेंगे, लेकिन परम पिता ये कोई भी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, परम आत्मा रहते ही है परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, बाबा जानते हैं सब बच्चे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान समझाते हैं, तो सिर्फ ये नहीं समझाना है कि दो बाप है, वो बाप भी है शिक्षक भी है, ये जरूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वो सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को? क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, भक्ति का फल मिलता है। कहते भगवान भक्ति करते जाओ, भगवान एक दिन मिलेगा। और भगवान आकर के क्या करेगा? भक्ति का फल देगा। क्या है भक्ति का फल? ज्ञान। और ज्ञान से होगी सदगति। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अर्थात बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। वर्षा है ये सब, जितने भी ज्ञान गुण शक्तियां ये सब भी तो वर्षे के रूप में है। अभी भी ये वर्षा है, फिर भविष्य में तो बहुत वर्षा मिलना है। अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं, भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते हैं? ज्ञान तो देते हैं, पर इस ज्ञान से क्या होता है? बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनाते हैं। ये है ऊंचे से ऊंचा वर्षा, विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वो बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है और फिर सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो क्या होगा? फिर बाप के रूप में क्या देता, टीचर के रूप में क्या देता, सतगुरु के रूप में क्या देता है? बाबा कहते ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए, सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाएगा। ये ऐड करो, बाप का परिचय देने में ये ऐड करो कि तीनों संबंध है उनसे। ये बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो वो टीचर भी है शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है, क्योंकि सर्वव्यापी कहना माना सब एक ही एक है। तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब में भगवान है, तो सब भगवान हो गए। फिर टीचर और स्टूडेंट का भेद तो रहा ही नहीं, टीचर अलग होता है स्टूडेंट अलग होता है। टीचर जरूर अलग है स्टूडेंट अलग है, जैसे बाप अलग है बच्चे अलग है। लौकिक में भी ऐसे थोड़ी, वो बच्चा ही बाप है या बाप ही बच्चा है, नहीं, बाप अलग है बच्चा अलग है। आत्मा ही परमात्मा बाप को याद करती है, उनकी महिमा भी करती है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो आकर के हमको क्या करते है? बीज रूप क्या करेगा? वो आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि सारे झाड़ का ज्ञान तो बीज में ही होता है। फिर बाबा कहते हैं वो बीज तो जड़ है इसीलिए वो सुना नहीं सकता, लेकिन चेतन है शिव बाबा तो सुनाते हैं सृष्टि चक्र सृष्टि रूपी वृक्ष का आदि मध्य अंत। तो वो आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ ये भी समझाओ, दो बाप तो जरूर समझाओ, वो तो समझाओ ही, तो साथ साथ ये भी समझाओ कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। लौकिक में भी बाप से पालना मिलती है, माता पिता से, फिर टीचर के पास भेजते हैं फिर पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप टीचर गुरु तीनों अलग अलग होते हैं दुनिया में। तो ये बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, फिर वो ज्ञान का सागर भी है, फिर वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्चित आनंद स्वरूप भी है। क्या क्या है बाप? सुख का सागर, शांति का सागर। अब उनकी महिमा शुरू कर दो, जब परिचय देते हो परमात्मा का तो फिर उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना, अनेक मते हैं, जितने मनुष्य उतनी उनकी मते, मुंडी मुंडी मते बिना, ऐसे है जितने दिमाग उतने विचार, ऐसे है दुनिया में। तो इतने सारे मतभेद हैं, उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत हैं। तो सर्वव्यापी अगर हो, क्योंकि कोई कहेगा सर्वव्यापी है, कोई कहेगा ऊपर है, कोई कहेगा हम सब में है, क्या क्या कहते रह गए। तो बाबा कहते सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएगा कैसे, फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं। अब वो सर्वव्यापी है तो फिर गाइड बनने की तो बात ही नहीं। शिक्षा देते हैं, शिक्षक बन के शिक्षा देते हैं, गुरु बन के गाइड बन करके ले जाते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने ते पुराना है, बाबा कहते संगम युग, पुराने ते पुराना है संगम युग, 5000 वर्ष पहले संगम युग था। सत्युग त्रेता फिर भी थोड़ा कम तो करेंगे ना, तो सबसे पुराना है संगम युग, जो अभी का समय है वही फिर सबसे पुराना समय भी था। सबसे पुराने ते पुराना है संगम युग, संगम युग कौन सा, नई और पुरानी दुनिया का बीच, ये सबसे पुराना है। तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर के अपना बनाया था, अपना बनाया था माना बच्चा बनाया था, और फिर हमारा टीचर सतगुरु भी बना था 5000 साल पहले। वो सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, हाँ केवल पिता नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है, हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीज रूप वृक्षपति है। वो जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सत्युग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है, हाँ तो इसीलिए सब देवता बन जाते हैं। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, और न जानने से फिर क्या होता है, उस वृक्षपति को नहीं जानते तो उससे क्या होता है, न जानने से तो फिर वर्षा कैसे मिल सकता है। पिता है वो, जानना चाहिए, तभी तो पिता है तो वर्षा मिलेगा, अगर जानते ही नहीं पिता को तो वर्षा कैसे मिलेगा। तुम यहाँ जब बैठते हो क्लास में आकर के बैठते हो तो अशरीरी होकर के बैठो, अशरीरी होकर के बैठो। ये तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है, घर परमधाम है, आत्मा उसमें रहती है तो वो अलग है। घर में रहने वाले तो घर से तो अलग होंगे ना। 5 तत्वों का पुतला ये शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है, सबका पाठ नूंधा हुआ है। पहले पहले तो मुख्य बात ये समझानी है कि बाप सुप्रीम, बाप टीचर, बाप सुप्रीम, बाप सुप्रीम टीचर है, आत्मा में सब पाठ भरा हुआ है, ये बहुत इसकी गहराई है, ये बात में समझाओ। पहले आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, फिर परमात्मा कौन है ये समझाओ, फिर दोनों का कंपेयर कंट्रास्ट करो। तो बाबा कहते हैं उसमें तो पहली मुख्य बात ये समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, लौकिक बाप क्या होता है, पारलौकिक बाप क्या है, वो लौकिक टीचर क्या, पारलौकिक टीचर क्या करते, वो गुरु क्या करते और सतगुरु परमात्मा क्या करते, तो झट वो कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, फिर डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है, आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, शरीरों के बाप में सारा ज्ञान थोड़ी है, वो भी कहाँ जानते हैं, लेकिन आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है आत्माओं के बाप की। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, नेति नेति न, ये वेदों में आता है नेति, नहीं अंत उनका हम नहीं पा सकते, उनका अंत माना हम नहीं जानते। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते क्योंकि उस समय वो सतो थे, सच बतलाते थे। अभी तो कह देते बस सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते पता है नहीं, समझ है नहीं, बस ऐसे ही कह देते। वो तो फिर भी अच्छे थे ऋषि मुनि, सच बताते थे नेति नेति का। तो बाबा कहते हैं हम रचिता रचना को नहीं जानते क्योंकि उस समय वो सतो थे। हर चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती ही है, नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है, मनुष्य ये भूल गए हैं सृष्टि चक्र के बारे में, क्या भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है, ये भूल गए हैं। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत गपोड़े लिख दिए, हाँ बड़ा चढ़ा करके क्या क्या लिख दिया है, बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक ही है, गुरु तो अनेक है, सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वो भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। किसको कहेंगे सदगति, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है तब कहेंगे कि दुनिया में सदगति है। वहां थोड़े मनुष्य ही होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य है, हाँ कितने ढेर है। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है, राजाई होगी, पहले तो एक विश्व महाराजन महारानी होंगे, धीरे 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 फिर कई रियासतें बनती है, राजाएं बढ़ते जाते हैं, फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, जब फर्स्ट होगा लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। ब्रिजमोहन भाई ने एक क्लास कराया था, बड़ी हंसी की थी, कहता है मैं तो त्रेता युग का ही महाराजा बनना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि हमको ज्यादा प्रजा मिलेगी, सतयुग के राजा को तो प्रजा बहुत कम मिलती है, तो इतनी थोड़ी प्रजा पर थोड़ी राज्य करना, मुझे तो ज्यादा प्रजा पर राज्य करना। तो सारे हंस पड़े थे, हाँ तो मजाक करते थे। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। ये ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं, ये तुम बच्चे समझते हो, भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। वो है बेहद का बाप, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही, 21 पीढ़ी अर्थात पीढ़ी किसको कहेंगे, जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं उसको कहेंगे पीढ़ी, अगर जन्म लिया और मर गया वो पीढ़ी थोड़ी हुई, पूरा 150 साल जिए तब कहेंगे पीढ़ी। तो 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, वहां अपने को आत्मा जानते हैं, कब जानते हैं, जब शरीर छोड़ने का समय आता है। बाकी तो आत्मा अभिमानी तो नेचुरल है, कोई याद करने की जरूरत नहीं होगी कि मैं आत्मा हूं, नेचुरल है। यहाँ तो हमको याद करना पड़ता है मैं आत्मा हूँ, क्योंकि देह अभिमान वहां नेचुरल है, परंतु आत्मा शरीर जब छोड़ने पर होती है तब वो आत्मिक स्मृति और तेज हो जाती है, क्योंकि मुझे जाना है, इस शरीर को छोड़ना है, नया चोला लेना है, तो आत्मा की स्मृति ताजी माना वो उभर आती है जैसे। तो बाबा कहते हैं वहां अपने को आत्मा जानते हैं, यहाँ देह अभिमानी होने कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर दूसरा, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वो क्या समझते हैं, मरते हैं, हम मरेंगे, हम मरेंगे, हाय मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। अरे मरेंगे थोड़ी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। पर यहाँ डर लगता है ना, क्योंकि देह अभिमान है, समझते हम मरते हैं। तो बाबा कहते हैं या देह अभिमानी होने कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे, कौन बनाएगा? जो है ही देह अभिमानी वो कैसे दूसरों को आत्म अभिमानी बनाएगा? तो कौन बनाएगा आत्म अभिमानी, जो सदा आत्म अभिमानी है वही सबको आत्म अभिमानी बना सकता है। और वो सदा आत्म अभिमानी कौन है, परमात्मा के सिवाय तो और कोई नहीं, वो कभी शरीर धारण करता ही नहीं है जो देह अभिमानी बने। तो बाबा कहते हैं अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे, इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई कोई सोचे फलाना है, एक भी नहीं। बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, वहां ये जानते हैं सतयुग में कि आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। ये वहां आत्मा को महसूस होता है जब वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ती है। सर्प का भी मिसाल है, ये सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणियां तुम हो जो विष्टा के कीड़ों को भू भू कर मनुष्य से देवता बना देती हो। ब्राह्मणिया हो वो भ्रमरी नहीं, वो तो कीड़े को चलो पंख लगा दिया आ गई भू भू किया, लेकिन जो सचमुच देवता बना देते हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मणिया हो, बाबा बच्चों को कहते हैं वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो जो विष्टा के कीड़ों को भू भू कर मनुष्य से देवता बना देती हो। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते दुनिया में, सब जो भी आते शांति मांगते। यहाँ भी आएंगे तो भी कहेंगे शांति कैसे मिले, शांति कैसे मिले। तो सभी शांति मांगते रहते हैं, शांति देवा, शांति देवा, हाँ हे प्रभु शांति दो। अब किसको पुकारते हैं, किसको कहते हैं शांति दो, जो शांति का दाता है। किसको पुकारते हैं शांति दो, जो शांति का दाता है अथवा सागर है। उनकी महिमा भी गाते हैं परंतु अर्थ रहित, महिमा गाते रहते हैं परंतु अर्थ रहित। कह देते हैं समझते कुछ भी नहीं है, चलो कह दिया शांति का सागर है तो फिर क्या, वो शांति आकर देते हैं ना, सबको देते हैं, शांति की दुनिया बनाते हैं, शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं ये थोड़ी जानते हैं, बस शांति देवा कह देते हैं। तो कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, 63 जन्म भक्ति करनी है, करनी है। बाद में आएंगे तो थोड़ी करेंगे, लेकिन जो सतयुग के आदि में आएंगे वो द्वापुर में आते ही भक्ति शुरू करते, 63 जन्म भक्ति करनी है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। भगवान क्या कहते, गीता में भी लिखा है, हाँ ये वेद शास्त्र पुराण आदि पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूं, मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूं। तो भगवान जब खुद ही बताते हैं तो बाबा कहते हैं इनसे पढ़ने से थोड़ी मिलेंगे भगवान। मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं, मुझे पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। ये है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, किचड़े की दुनिया बाबा कहते हैं, जो कोई काम की नहीं। अभी किचरा चारों ओर पड़ा हो वो किस काम का किचरा, और ही बदबू फैलाएगा। तो बाबा कहते हैं जो कोई काम की नहीं, कितना दुख है। दुख कहां से आया, कहां से आया इतना दुख? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति, पहले ज्ञान था, सत्युग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध थी, फिर भक्ति शुरू हुई तो उतरते आए। गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति, ज्ञान बाप सुनाते हैं और भक्ति कौन सिखलाता है, भक्ति कौन सिखलाता है? बाबा कहते हैं रावण, रावण तुमको भक्ति सिखलाता है, क्योंकि बाप से बेमुख होते ना, रावण तुमको भक्ति सिखलाता है। अब देखने में तो दोनों नहीं आते, देखने में न बाप आता है न रावण आता है, दोनों देखने में नहीं आते, दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता है, आत्मा को समझा जाता है। हम आत्मा है ये समझा जाता है, तो आत्मा का बाप भी जरूर होगा, उसको भी इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, उनको समझा जाता है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता ही नहीं लौकिक में। बाबा कई बार कहते हैं हाँ कोई कोई बाप होगा वो टीचर बन करके अपने बच्चों को पढ़ाता होगा, हाँ या स्कूल में पढ़ाता होगा और घर में वो बाप है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे कोई होता ही नहीं जो बाप फिर टीचर बनकर पढ़ाए। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सदगति को पा लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती है। सदगति हो गई, ज्ञान मिल गया, सदगति पा ली, फिर गुरु की दरकार ही नहीं होती। बाप सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला है, सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों कोई सर्वव्यापी तो कह न सके, तो वो तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, मनुष्य याद भी करते हैं, परमात्मा को याद करके क्या कहते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो, हा? सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो ले चलने के लिए। गाते हैं ना, हम मझधार में है एक ही वैया, आओ हमारी नैया को पार करो। तो बाबा कहते हम, तो बाबा कहे फिर हमारा गाइड भी बनो ले चलने के लिए, इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, ये सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। चारों तरफ पानी है, जमीन बीच में, तो श्रीलंका भी ऐसे ही ना, चारों तरफ पानी है। श्रीलंका को कहते हैं पर्ल इन द ओशन, जैसे एक मोती होता है ना, तो पर्ल इन द ओशन। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, ये सारी धरती जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है, भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, किसलिए मिल रही है श्रीमत? श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उनको पूजते रहते, भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो ये भारत सतयुग था, फिर राहु की दशा बैठी तो कलयुग हो गया। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है, क्या हाल हो गया है, लड़ते ही रहते हैं ना आपस में, सब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाप राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, तो राम राज्य चाहिए कहते, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि रावण राज्य है। राम राज्य चाहिए माना राम राज्य नहीं है, तो इसका ऑपोजिट ही है ना, रावण राज्य है तो रावण राज्य है में है ना, नर्कवासी है। रावण राज्य को नर्क कहा जाता है, स्वर्ग और नर्क आधा आधा है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। रावण राज्य किसको और राम राज्य किसको कहा जाता है, तो पहले पहले ये निश्चय बुद्धि बनाओ, फिर वही पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि किस बात में बनाओ कि ये हमारा बाप है, शिव बाबा हमारा बाप है, हम सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, हर एक बच्चे को अपने पिता से वर्षा मिलने का हक है, मिला था, बाप ने राजयोग सिखलाकर सुख धाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए थे शांति धाम, बाप ने अपने बच्चों को सुख धाम का मालिक बनाया, तो जो बच्चे बने बाबा के वो सुख धाम के मालिक बने और बाकी सब चले गए शांति धाम। ये भी बच्चे जानते हैं वृक्षपति है चैतन्य, सत चित आनंद स्वरूप है, बीज रूप माना ही सत चित आनंद स्वरूप है, आत्मा सत्य भी है तो चैतन्य भी है, बाप भी सत भी है चैतन्य है और वृक्षपति है। ये उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है, ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व माना ऊपर, तो बीज है वो ऊपर में है, मूल ऊपर में है और फिर वृक्ष उसकी रचना नीचे है, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं, जब तुम किसको समझाते हो ना, तो कोई एकदम हिंदी भाषी होंगे ना, वो कहेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों बोलते हो, इंग्लिश शब्द क्यों बोलते हो, हिंदी बोलो ना। हाँ, तो हिंदी क्या शब्द है, इतिहास और भूगोल, तो हिस्ट्री माना इतिहास और ज्योग्राफी माना भूगोल। तो अब तुमको कहते हैं लोग कि हिस्ट्री ज्योग्राफी अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, बाबा कहते बाबा के कितने अंग्रेजी शब्द होते हैं, तो बाबा कहते ना आजकल तो अंग्रेजों ने इतना राज्य किया है भारत पर, तो जो भी हिंदी बोलते हैं उसमें अंग्रेजी तो मिक्स हो ही जाती है, तो बाबा कहते अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं, फिर क्या और समझते हैं कि भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई, अब वो गीता सुनाई तो संस्कृत में सुनाई, आप लोग संस्कृत में बोलो, तो फिर हम क्या कहते हैं, भगवान ने संस्कृत में गीता नहीं सुनाई, उसने तो हिंदी में सुनाई, संस्कृत में सुनाता तो कौन समझता, भगवान ने तो हिंदी में सुनाई है, तो वो समझते गीता संस्कृत में सुनाई भगवान ने। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहां ये भाषा थी, वहां ये भाषा थी ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है, सतयुग में संस्कृत भाषा थी ऐसे तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, देवनागरी कहते हैं देवताओं की भाषा, वो तो हिंदी थी, वो शुद्ध हिंदी थी, एक शब्द का एक ही अर्थ, संस्कृत में तो एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं, पर एक शब्द का एक ही अर्थ, ये शुद्ध हिंदी भाषा जो देवनागरी है देवताओं की भाषा, भाषा है जरूर सत्युग में भाषा तो होगी, जो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। सत्युगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहां नहीं है। सत्युग में सत्युग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो। अब सब सत्युग में तो राधे कृष्ण थे, पर अभी तुम क्या हो? सब मीराएं हो, जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करते हो। मीरा ने भी राजकुमारी थी, रानी थी, उसका पति राणा राजा था, लेकिन उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। वो उनको कहते घूंघट लगाओ, कहते घूंघट क्यों लगाओ, मैं तो श्री कृष्ण की हो गई, वही मेरा पति है। तो वो पति का मानती नहीं थी, बिल्कुल नहीं मानती थी, तो नाचती रहती थी। अब इतने बड़े घर की रानी और वो नाचती रहे और मंदिरों में घूमती रहे, तो बाबा कहते वो तो उनका पति बहुत नाराज होता था, ये लोक लाज में नहीं रहती, क्योंकि स्त्रियां तो घूंघट में रहती है ना। अब ये पत्नी तो थी लेकिन घूंघट में नहीं रहती थी, तो सब इनसे नाराज हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं जो कलयुगी लोक कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है, तुम सब मीराएं हो, जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। घूंघट में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो उस समय बाबा की जो लौकिक युगल थी, पहले तो वो भी घूंघट करती थी, बाबा के आगे भी घूंघट करती थी, औरों के आगे तो करती थी, हर वक्त घूंघट में ही रहती थी। अभी भी कई ऐसी माता है सारा टाइम घूंघट में ही रहती है, परंतु बाबा ने एकदम से सबका घूंघट हटा दिया। ब्रजेंद्रा दादी भी घूंघट में रहती थी, ससुर के आगे आती थी, तो बाबा ने कहा नहीं, तुम सब देवियां हो, देवियों को थोड़ी घूंघट में दिखाते हैं, साक्षात देवियां हो, तुम सबको साक्षात्कार कराने वाले हो। तो लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं है, तो जो कलयुग तुम सब मीराएं हो, जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो, तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है, कितना झगड़ा होता है। हाँ, बहुत झगड़ा होता है ना, कई हमारी माताएं बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान में आते हैं, लेकिन पति उनको आने नहीं देते, तो फिर और घूंघट ही निकालती रहती है। तो पहले भी सेंटरों पर माताएं आती थी ना, तो घूंघट निकाल के आती थी, लेकिन धीरे धीरे उनको कहा भाई ये घूंघट हटाओ, हटाओ, घूंघट पहन के आप मुरली सुनोगी क्या? तो कम से बाबा से दृष्टि लेनी है, तो दृष्टि कैसे लोगी अगर घूंघट में होगी? तो धीरे धीरे कैसे सेंटर पर आती थी तो घूंघट हटा देती। हमारे कई हैं बुरका पहनते ना, हमारे मिडल ईस्ट में कई ऐसे देश हैं जहां बुरका पहन करके सेंटर पर आती है, क्योंकि वो अरब देश के हैं। तो एक मैं गई थी अबू धाबी में, जब सोना बहन रहती है, तो वहां एक बहन को मैंने देखा, जब आती थी तो काला बुरका पहन के आती थी, क्लास में आती थी, लेकिन उसने एक सफेद बुरका बना के रखा था सेंटर पर। तो जब आती थी तो काला बुरका उतार कर सफेद बुरका पहन के क्लास में बैठती थी। यहां भी आती थी सफेद बुरका पहन के आई थी, तो बताती थी कि हम सफेद बुरका नहीं पहन सकते, काला ही पहनना होता, लेकिन बाबा के घर में उसने सफेद बुरका बना दिया था और वो पहनती थी। यहां भी उसने सफेद बुरका पहना था जब आती थी। तो बाबा कहते हैं तो जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो, तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का ये चित्र भी सामने है। कौन सा चित्र? जगत जीत जो बनी है लक्ष्मी नारायण। तो जगत जीत बनने वालों का ये चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। शांति देवा किसको कहेंगे? परमात्मा को ही कहेंगे ना, शांति दो। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्यों को ये पक्का निश्चय कराओ कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर के हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही हैं नरक को स्वर्ग बनाने। नरक टीचर भी है, फिर साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी है, वो अपना पूरा पाठ बजाकर फिर घर जाती है। ले जाने वाला गाइड भी तो एक चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। भगवान का ये काम है, उसी मनुष्य का नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वो अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। दूसरा, बेहद का बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है। ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरे, हद के नाज नखरे क्या होते हैं? बहाने देते रहना, आऊ करते रहना, थोड़ा बहुत इधर उधर बेपरवाह बनते रहना, आज्ञाकारी नहीं बनना, ये सब नाज नखरे। तो हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। रूहानी नाज माना रूहानी नशा। तो रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, फेरे में लाता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। जो बाबा नहीं कर सकता, नहीं करेगा, मुझे भी नहीं करना है। हाँ, नहीं कहा ऐसे वैसे, तो माना ये बाबा का तो संस्कार नहीं है। तो बाबा कहे ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। बाबा से इतना प्यार है तो उसमें भले नखरे करो। बाबा मैं भूल जाती हूँ आपको, बाबा, हाँ, ऐसे नखरे करते ना बच्चे। तो प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। स्लोगन, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। किससे मोहब्बत? बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, आज पहली तारीख है, नया महीना शुरू हुआ है और इस महीने का जो अव्यक्त इशारे हैं, खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब, खुश नुमा बनो। क्या बनो, खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब खुशनुमा बनो। ये सारे महीने के अव्यक्त इशारे होंगे। कैसे खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब खुशनुमा बने। पहला, आज पहली तारीख का वर्तमान समय विश्व में सबसे ज्यादा खुशी की आवश्यकता है। आपके पास खुशी का खजाना भरपूर है ना, खुशी का भरपूर खजाना। तो सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी में रहने का साधन दो। इससे सभी आत्माएं आपको खुशी का देवता मानेंगे, आपको खुशी का देवता मानेंगे। मैं खुशी का देवता हूं, आज ये नशा चढ़ाओ, मैं खुशी का देवता हूं। सदा अपना ये टाइटल स्मृति में रखना, मैं खुशी का देवता हूं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करें।